नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भाजपा सरकार में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 20 से भी कम हुई। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नेफेड जल्द ही किसानों से सीधी खरीद शुरू करेगा। इसराइल ईरान के बीच संघर्ष 8वें दिन भी जारी। ईरान के विदेश मंत्री जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और यशस्वी जायसवाल ने लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में शतक जड़ा। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 20 से भी कम कर दी है। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में नक्सलवाद का जल्द ही खात्मा होगा।
बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 18,600 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने ओडिशा दृष्टिपत्र 2036 का भी विमोचन किया। इससे पहले बिहार में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकास का प्रतीक है और पिछले 11 वर्षों में इसने राज्य को समृद्धि और तेज विकास की ओर अग्रसर किया है। सीवान के जसौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एनडीए ने बिहार के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं।
सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं, बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है, 1.5 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा के अवसर प्रदान करना बहुत आवश्यक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड जल्द ही किसानों से सीधी खरीदारी शुरू करेगा, जिससे कृषि उत्पादन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। वे आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
नाफेड की ऐप पर किसान रजिस्टर्ड करा दे तो उसकी 100% दलहन और मक्का नाफेड MSP पे खरीद लेगा, और अगर बाजार में मूल्य ज्यादा है तो किसान मुक्त है वो बाजार में बेचने। मक्के का रेट कम है तो आप दे दीजिए MSP पर, ज्यादा है तो ज्यादा मुनाफा कमाए। और धीरे धीरे सारी चीजों में ये मॉडल ऐप की सफलता को देखते हुए आने वाले दिनों में किसानों से सीधी नाफेड खरीदी करने की शुरुआत करने वाली है।
श्री शाह ने बताया कि देश भर में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर कल होने वाले योग अभ्यास कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी स्मारकों में जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण योग दर्शन में निहित समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण चेतना के महत्व का उल्लेख करते हुए योग सत्र आयोजित करेगा। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों प्रतिभागी दिल्ली के पुराना किला, कर्नाटक के गोल गुंबद, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला, महाराष्ट्र की एलिफेंटा केव्स गुफाओं सहित प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों पर योग का अभ्यास करने के लिए एक साथ आएंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। वे विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेंगे, जिसमें 3 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसे योग संगम पहल के तहत देश भर में 10 लाख से अधिक स्थानों के समन्वित किया गया है। कई केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के साथ देश भर में विभिन्न स्थानों पर समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अनुरूप इस भव्य योग महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन कल्याण प्रथाओं के बीच कालातीत संबंध को बढ़ावा देना है। पल्लवी के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आज विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां लगभग 25,000 जनजातीय बच्चों ने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार किए। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज भारतीय मिशन ने पोखरा में योग सत्र का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इस योग सत्र में भाग लिया। उधर सऊदी अरब में भारतीय दूतावास कल सऊदी योग समिति और प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। इसराइल और ईरान के बीच एक दूसरे पर मिसाइल हमले आज 8वें दिन भी जारी रहे। इस युद्ध में बढ़ती वैश्विक चिंता और कूटनीतिक शिथिलता के बीच यूरोपीय विदेश मंत्री आज जिनेवा में ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की ईरान के साथ आधिकारिक वार्ता फिर शुरू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र में वार्ता से पहले अपने देश पर इसराइल के हाल के मिसाइल हमलों की निंदा की और इन्हें गंभीर युद्ध अपराध तथा कूटनीतिक विश्वासघात बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने पश्चिम एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में भी हलचल मचा दी है।
इसराइल द्वारा उत्तरी डोम गैस क्षेत्र को निशाना बनाए जाने के बाद कतर में प्रमुख ऊर्जा फर्मों के साथ आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। यह क्षेत्र ईरान और कतर द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाने वाला सबसे बड़ा ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडार है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस हमले ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इन हमलों ने कतर के लिए दुविधा पैदा कर दी है, क्योंकि उसे ईरान के साथ अपने महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को बरकरार रखते हुए अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ रणनीतिक गठबंधन को भी जारी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अभी भी संतुलित है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। एक तीसरा अमरीकी नौसेना विध्वंसक पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। यूएसएस निमिर्ज वाहक स्ट्राइक समूह अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इस बीच रूस ने कड़ी चेतावनी जारी की है। रूस ने कहा है, अगर इसराइल अमरीकी समर्थन के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाता है तो यह बहुत नकारात्मक कदम होगा। उधर ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। तेहरान और अन्य शहरों में हजारों लोग एक साथ आकर इसराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
इस बीच भारतीय नागरिकों को लेकर 2 उड़ानें आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगी। पहली उड़ान ईरान के मशाद से और दूसरी उड़ान तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद से आएगी। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क में रहें। तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हैं +98912810915 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है +98912810909। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बाद अब तक लगभग 231 डीएनए नमूनों की आज शाम 6 बजे तक पहचान कर ली गई। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि 210 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत ने हाल के वर्षों में माल लाने ले जाने की लागत के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी की है, जो और कम होकर 9% के आसपास हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार को दिए विशेष साक्षात्कार में श्री गडकरी ने बताया कि इससे देश के विकास में काफी सहयोग मिलेगा। श्री गडकरी का ये साक्षात्कार आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज रांची में सीबीएस स्टेशनों आकाशवाणी स्टेशनों के बिक्री प्रभाग की पूर्वी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के सीबीएस स्टेशनों ने भाग लिया। और अब बात खेलों की। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लीड्स में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल, शतक जड़कर और केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मौसम विभाग ने कल असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भाजपा सरकार ने देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 20 से भी कम की। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नेफेड जल्द ही किसानों से सीधी खरीद शुरू करेगा। इसराइल ईरान के बीच संघर्ष 8वें दिन भी जारी। ईरान के विदेश मंत्री जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।